समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आप सभी का आकाशवाणी के गोल्ड चैनल पर कार्यक्रम आज सवेरे में। सुबह के 7:30 बज चुके हैं और 7 अगस्त की इस नई सुबह में अब तक के प्रमुख समाचार और बहुत सी रोचक जानकारी लेकर मैं निखिल और मेरे साथ में शेफाली स्टूडियो में हैं, आप सभी का हम स्वागत करते हैं।
हेलो निखिल एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। सो लिसनर्स, क्योंकि आज रविन्द्रनाथ टैगोर की डेथ एनिवर्सरी है तो लेट्स स्टार्ट विद अ कोट बाय हिम। ही सेज, एवरीथिंग कम्स टू अस दैट बिलोंग्स टू अस इफ वी क्रिएट द कैपेसिटी टू रिसीव इट। एंड विद दैट वी शैल स्टार्ट विद आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे, वेयर एंड ओवर द नेक्स्ट हाफ एन आवर वील ब्रिंग यू द लेटेस्ट इन नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज, मेट्रो सिटी अपडेट्स एज वेल एज सम हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस डे दैट इज 7th of August. So let's begin with the headlines first.
जी हाँ।
India is in close and constant touch with its nationals in Bangladesh through its diplomatic missions amid unrest in the neighbouring country. In a Suomoto statement in both Houses of Parliament over the situation in Bangladesh yesterday, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said, New Delhi is monitoring the situation with regard to the status of the minorities. Dr. Jaishankar informed the Lok Sabha and the Rajya Sabha that presently around 19,000 Indian nationals are in Bangladesh, including 9,000 students. He said the bulk of the students have already returned to India last month on the advice of the High Commission in Dhaka. Bangladesh President Mohammad Shahabuddin has dissolved the parliament and appointed Nobel laureate Mohammad Yunus as the head of an interim government. The decision to this effect was taken at a meeting President Shahabuddin held with the chiefs of the three services and a 13-member delegation of anti-discrimination student movement at the presidential palace in Dhaka yesterday. President's Press Secretary Mohammad Joynal Abedin told media persons late last night that other members of the interim government will be finalised after consultations with various political parties. Meanwhile, Bangladesh Nationalist Party, BNP chief and former Prime Minister Khalida Zia was released from house arrest. The anti-discrimination student movement that spearheaded the recent protests had earlier said that 84-year-old Yunus has agreed to head the interim government. Yunus won the Nobel Peace Prize in 2006 for his anti-poverty campaign through the Grameen Bank.
10वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हथकरघा क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए हथकरघा बुनकरों को संत कबीर और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान करेंगे। कार्यक्रम के दौरान उपराष्ट्रपति एक कॉफी टेबल पुस्तक परंपरा भारत की हथकरघा परंपराओं में स्थिरता का विमोचन करेंगे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, निर्यातक, डिजाइनर और देशभर के 1,000 से अधिक बुनकर शामिल होंगे। इस दौरान देशभर में विभिन्न समारोह आयोजित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य हथकरघा क्षेत्र के महत्व और देश के सामाजिक आर्थिक विकास में इसके योगदान के बारे में जागरूकता पैदा करना है।
US Vice President Kamala Harris has been formally nominated by the Democratic Party as its presidential candidate. Harris has become the first Indian American to win the nomination from a major political party. After her nomination, Harris elected Minnesota Governor Tim Walz as her vice presidential candidate. Harris's nomination became official after a 5-day round of online balloting by Democratic National Convention delegates ending Monday night. The party, in a statement, said 99% of delegates had cast their ballots for Harris.
केंद्र सरकार द्वारा संशोधित ब्याज सहायता योजना जारी रखने के निर्णय को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से फसल ऋण, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन सहित विभिन्न गतिविधियों के लिए कम ब्याज दर पर अल्पावधि ऋण उपलब्ध कराने को कहा है। किसानों को 7% की ब्याज दर पर 3 लाख रूपये की राशि दी जाएगी। रिजर्व बैंक ने एक अधिसूचना में कहा कि ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं को वर्ष 2024-25 के लिए ब्याज में 1.5% की छूट दी जाएगी। समय पर ऋण अदा करने वाले किसानों को ब्याज में 3% की अतिरिक्त छूट भी मिलेगी। रिजर्व बैंक ने यह भी कहा कि अल्पावधि ऋण लेने के लिए आधार नंबर जोड़ना अनिवार्य होगा। संकटपूर्ण स्थिति में किसानों को अपनी उपज बेचने से रोकने और गोदामों में उपज भंडारण को प्रोत्साहित करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को फसल की कटाई के बाद 6 महीने की अतिरिक्त अवधि के लिए ब्याज में छूट का लाभ मिलेगा।
In U.S., Hurricane Debbie, which made landfall in Florida yesterday, has been downgraded to a tropical storm as it continues to wreak havoc across the southern United States. The National Hurricane Center, NHC, has issued warnings of potentially catastrophic flooding in parts of Georgia, South Carolina, and North Carolina due to the expected heavy rainfall. In response, the governors of Georgia, South Carolina, and North Carolina have declared states of emergency to expedite resources and assistance to affected areas.
सरकार ने सीएस शेट्टी को 3 साल की अवधि के लिए भारतीय स्टेट बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री शेट्टी देश के सबसे बड़े ऋण प्रदाता बैंक एसबीआई के वरिष्ठ प्रबंध निदेशक हैं। वे 28 अगस्त को वर्तमान अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा का स्थान लेंगे। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 साल की अवधि के लिए श्री शेट्टी को एसबीआई अध्यक्ष नियुक्त करने के वित्तीय सेवा विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है।
And in cricket, third and final ODI between India and hosts Sri Lanka will be played today at R. Premadasa Stadium in Colombo. The match will start at 2:30 PM IST. Sri Lanka are leading the series by 1-0 after winning the second ODI by 32 runs. With the first match ending in a tie, Rohit Sharma's men in blue can only go for a series leveller in the third ODI. Sri Lanka find themselves on the verge of history as they are just one step away from winning their first bilateral series against India after 27 years. On the other hand, India will be desperate for a win in today's fixture and keep their unbeaten run against Sri Lanka intact. India have not lost a series against Sri Lanka since 1997.
विदेश मंत्रालय ने परामर्श जारी कर भारतीय नागरिकों से लीबिया की गैर जरूरी यात्रा न करने को कहा है। इससे पहले मंत्रालय ने 23 मई 2016 को भारतीय नागरिकों की लीबिया यात्रा पर प्रतिबंध लगाया था। लीबिया की वर्तमान स्थिति के आकलन के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है। लीबिया में रह रहे भारतीय नागरिकों को सावधानी बरतने, सड़क मार्ग से दूसरे प्रांतों की यात्रा न करने और आपातकाल की स्थिति में फोन नम्बर 218943992046 पर त्रिपोली स्थित भारतीय दूतावास के संपर्क में रहने की सलाह दी गई है। राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान आम जनता के लिए इस महीने की 16 तारीख से 15 सितंबर तक खुला रहेगा। 14 अगस्त को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में अमृत उद्यान का ग्रीष्मकालीन वार्षिक भ्रमण विधिवत आरंभ होगा। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर इसे पहली बार विशेष रूप से खिलाड़ियों के लिए खोला जाएगा और साथ ही 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर अमृत उद्यान शिक्षकों के लिए आरक्षित रहेगा। अमृत उद्यान में आम लोगों का प्रवेश राष्ट्रपति भवन के गेट नंबर 35 से होगा। राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट और गेट नंबर 35 के बाहर स्थित कियोस्क से अमृत उद्यान में प्रवेश की ऑनलाइन बुकिंग की जा सकती है। तो ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। और अब आज सवेरे में समय हो चला है प्रमुख महानगरों यानी चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता से जुड़ी हुई खबरों को आप तक पहुंचाने का। तो शेफाली, कहां से शुरू कर रहे हैं हम?
निखिल, लेट्स स्टार्ट विद न्यूज फ्रॉम चेन्नई। एंड लिसनर्स, वी हैव समथिंग फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ ड्रामा एंड आर्ट्स हियर। द सेकेंड एडिशन ऑफ अ मल्टी लिंग्वल थियेटर फेस्टिवल इनॉग्रेटेड ऑन द 5th ऑफ दिस मंथ विल कम टू अ क्लोज ऑन फ्राइडे एट द भारतीय विद्या भवन चेन्नई। इट हैज फीचर्ड एन अरे ऑफ रेगुलर एंड शॉर्ट प्लेज इन तमिल, कन्नड़, Malayalam, English and Hindi. The event aims to explore the richness of different languages and cultures. The director of Bharatiya Vidya Bhavan said that the productions written and directed by Rahul Thomas, Megha Samira, Esil Nanu, Rajat Mishra, Hitesh Verma and Varshiki Jethwani and 6 short plays by various troupes are part of the festival. And in another news from Chennai, State Labour Minister C.V. Ganeshan issued a placement order to 2,310 ITI students who completed their training under Industry 4.0 standards. The Labour Department said that the ITI students were appointed in leading companies after completing their courses in industrial training institutes. They were selected by TNPSC. This was the first batch of students who have completed training under Industry 4.0 standards and were placed. More than 84% of the students who underwent training were selected for jobs. And now news from Bengaluru. So Nikhil, Independence Day fervor has set in across the country in different states. So dekhte hain Bengaluru mein kya ho raha hai. Lal Bagh Botanical Garden in Bengaluru will host its customary Independence Day flower show from August 8th to 19th. This will be the 216th edition of the flower show. During this year, the flower show will celebrate the life and achievements of Dr. B.R. Ambedkar, the architect of the Constitution of India. The main attraction will be the replica of the old Parliament building and also the birthplace of Ambedkar as it appears in Mau in Indore. The show will be inaugurated by Chief Minister Siddaramaiah in the presence of Bhim Rao Yashwant Ambedkar, the grandson of Bharat Ratna Dr. B.R. Ambedkar. Around 30 lakh flowers and around 200 varieties will be used to create various floral models and floral settings in the show. And now listeners, news from Hyderabad. Telangana state has closed two more agreements with Arcesium, a leading technology and service solution provider for asset managers, and Swachh Bio, a lignocellulosic biofuels manufacturing company focused on providing energy solutions in New York. Chief Minister A. Revant Reddy led delegation, which is currently on a visit to the U.S. to attract investments to the state, held detailed discussions with a high-level delegation led by the CEOs of the companies. The Chief Minister's office in a release stated that the company announced plans to expand its operations in Hyderabad. Accordingly, the discussions focused on the expansion of the Arcesium's first overseas office in Hyderabad. The Hyderabad Centre plays a crucial role in supporting Arcesium's global operations, particularly in areas of data management and data strategy initiatives. The company will hire 500 high-end tech talent in Hyderabad in the next 2 years. Swachh Bio announced that it will soon establish a 2.5 lakh litres per day second generation cellulosic biofuels plant in Telangana with an investment of nearly 1,000 crore rupees. In the first phase, the company will provide employment to 250 people at the plant and 250 people in additional support and other roles. Praveen Paripathi, chairperson, Swachh Bio, held discussions with the Telangana delegation. And dear listeners, now for news from Delhi, Mumbai and Kolkata, let's move over to Nikhil.
पूर्वी दिल्ली में सीलमपुर के एसडीएम श्रम विभाग राजस्व विभाग और एक एनजीओ के सहयोग से भजनपुरा क्षेत्र के गामरी गांव में एक जूट बैग बनाने वाली फैक्ट्री और प्रिंटिंग में काम करने वाले 18 बच्चों को बचाया गया है। इस मामले में 9 आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ बाल कानून की प्रासंगिक धाराओं के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ये अधिकांश बच्चे 11 से 17 वर्ष के आयु वर्ग के हैं और उत्तर प्रदेश, बिहार तथा उत्तराखंड राज्यों के रहने वाले हैं। राजधानी के भारत मंडपम में 28वां दिल्ली पुस्तक मेला 2024 आज से शुरू हो रहा है। इसका आयोजन इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है। पुस्तक मेले के माध्यम से सभी उम्र के लोगों के बीच पठन पाठन और लेखन को प्रोत्साहित करने में यह मेला महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। मेला इस महीने की 11 तारीख तक चलेगा। उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक शोभन चौधरी ने कल विभागाध्यक्षों और मंडल रेल प्रबंधकों के साथ एक बैठक में उत्तर रेलवे की कार्य प्रगति की समीक्षा की। इस बैठक में गतिशीलता में वृद्धि और अन्य विकासात्मक कार्यों तथा माल लदान जैसे विषयों पर विचार विमर्श किया गया। संरक्षा को उत्तर रेलवे की प्राथमिकता बताते हुए महाप्रबंधक ने कहा कि गतिशीलता अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिस पर नियमित और कड़ी निगरानी की आवश्यकता है। उन्होंने मंडलों को गतिशीलता बढ़ाने संबंधी कार्यों में तेजी लाने और अन्य कार्यों की प्रगति की जांच करने के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए। महाप्रबंधक ने नई दिल्ली हावड़ा और नई दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर रेलगाड़ियों की गति सीमा 130 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ाकर 160 किलोमीटर प्रति घंटा के कार्यों की प्रगति का भी जायजा लिया। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने निर्धारित समय पर द्वारका 19B के गोल्फ व्यू कॉन्डेंस के फ्लैट आवंटियों को कब्जा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये कब्जा उन्हीं आवंटियों को दिया जा रहा है जिन्होंने फ्लैट की पूरी कीमत का भुगतान कर दिया है। प्राधिकरण ने आवंटियों से अनुरोध किया है कि वे कब्जा पत्र प्राप्त होने के बाद ही संबंधित फ्लैट का दौरा करें। विज्ञप्ति में कहा गया है कि टावर्स आई, जे, के और एल के मामले में इन फ्लैट्स के पूरा होने में थोड़ा और समय लगेगा और प्राधिकरण ने इसके लिए अंतिम किस्त के भुगतान की समय सीमा 1 महीने और बढ़ा दी है। और खबर अब महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र सरकार ने असम और केरल के लिए 10-10 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की है। गौरतलब है कि केरल के वायनाड जिले में पिछले महीने एक बड़े पैमाने पर भूस्खलन के कारण जान माल का बड़ा नुकसान हुआ था। वहीं असम में भी बाढ़ और भारी बारिश के कारण राज्य को नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र दोनों राज्यों को क्षतिग्रस्त क्षेत्रों को ठीक करने और पुनर्विकास करने तथा बचे हुए लोगों के पुनर्वास में मदद करने के लिए हाथ बढ़ा रहा है। महाराष्ट्र में 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान मनाया जाएगा, जिसमें 9 अगस्त से कई जन जागरूकता और संबंधित गतिविधियां शुरू करने की भी योजना है। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव विकास खड़गे के अनुसार राज्य तिरंगा रैली, तिरंगा यात्रा, तिरंगा मैराथन, एक प्रतियोगिता, प्रतिज्ञा लेना और तिरंगा सेल्फी गतिविधियों का आयोजन करने का अभियान जारी रहेगा। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने 7 सितंबर से शुरू होने वाले गणेश उत्सव का आयोजन करने वाले गणेश मंडलों के लिए नकद पुरस्कार की भी घोषणा की है। राज्य के सांस्कृतिक मामलों के मंत्री सुधीर मुनगंटीवार के अनुसार शीर्ष 3 गणेश मंडलों को 5 लाख, 2.5 लाख और 1 लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। विलांकनी उत्सव 2024 की पूर्व संध्या पर अतिरिक्त भीड़ को कम करने के लिए पश्चिम रेलवे बांद्रा टर्मिनस और विलांकनी के बीच एक विशेष रेलगाड़ी चलाएगा। एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार रेलगाड़ी संख्या 09093 27 अगस्त और 6 सितंबर की रात को 9:20 से बांद्रा टर्मिनस से प्रस्थान करेगी और इसके लिए बुकिंग 9 अगस्त से शुरू हो जाएगी। और खबर अब कोलकाता से। पश्चिम बंगाल सरकार ने सड़कों पर सरकारी बसों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कल परिवहन विभाग की बैठक में इस संबंध में निर्देश दिए। सरकारी बस कर्मचारियों की कार्य शिफ्ट बढ़ाकर 4 की जा सकती है। फिलहाल बसें 3 शिफ्ट में चलती हैं। सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामले के कारण सरकार 1180 ई बसों को सड़कों पर फिलहाल अभी नहीं चला पा रही है। तो ये थी महानगरों से संबंधित कुछ प्रमुख खबरें। और श्रोताओं, अब समय हो चला है हाल मौसम जानने का। तो आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली की हम बात करें तो दिल्ली में आज बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं पर मध्यम बारिश होने के आसार हैं। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। मुंबई की बात करें तो मुंबई में भी बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर वर्षा होने की आशंका है। न्यूनतम तापमान आज 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। वहीं हम कोलकाता की तरफ चलें तो आमतौर पर आसमान में बादल छाए रहेंगे और एक या दो स्थानों पर गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। शेफाली, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद का मौसम आज कैसा रहेगा, ये भी आप हमारे श्रोताओं को बताएं।
जी बिल्कुल, Chennai is expected to have generally cloudy sky with moderate rain. The minimum temperature is 25 degrees Celsius and maximum will be around 35 degrees. Bengaluru is also expected to have generally cloudy sky with a few spells of rain or thunder showers. The minimum temperature is 20 degrees Celsius and maximum will be around 31 degrees. Hyderabad is expected to have generally cloudy sky as well with light rain or drizzle. The temperature will hover between a minimum of 24 degrees and a maximum of 31 degrees Celsius.
और श्रोताओं, पेरिस ओलंपिक में आज भारत के लिए बड़ा दिन है। कल भी एक शानदार दिन भारत के लिए रहा था जब भाला फेंक स्पर्धा में हमने एक मजबूत दावेदारी पेश की और कुश्ती में वो करके दिखाया जो पहले कभी नहीं हुआ था। और हालांकि हॉकी में हमें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन एक बेहतरीन हॉकी का मैच देखने का मौका मिला। ये किस्मत की बात थी कि हम सेमीफाइनल में हार गए, लेकिन ये वही टीम थी जिसको हमने 5 बार ऑलरेडी हराया हुआ है। तो क्या कुछ हुआ कल के दिन, इस बारे में हम जानते हैं और क्या होने वाला है इसके बारे में भी हमारी ये खास रिपोर्ट लेकर के आ रहे हैं हमारे सहयोगी महेंद्र।
महिलाओं के 50 किलो वर्ग की फ्री स्टाइल कुश्ती में विनेश फोगाट ने टोक्यो ओलंपिक की स्वर्ण पदक विजेता जापान की युई सुसाकी को हराया और यूरोपियन चैंपियन यूक्रेन की ओक्साना को क्वार्टर फाइनल में और पैन अमेरिकी चैंपियन क्यूबा की यूसनेलिस गुजमन को सेमीफाइनल में हराकर फाइनल में प्रवेश किया, जहां वे आज 6ठी वरीयता प्राप्त अमेरिका की सारा हिल्डे ब्रांड से अपना स्वर्ण पदक मुकाबला खेलेंगी। कुश्ती में ओलंपिक फाइनल में जगह बनाने वाली वे पहली भारतीय महिला हैं। ओलंपिक और विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में 3.34 मीटर का थ्रो कर फाइनल में प्रवेश किया, जहां आज वे पदक के लिए खेलेंगे। आकाशवाणी से बात करते हुए नीरज चोपड़ा,
अच्छी कंडीशन और अच्छी थ्रो के साथ क्वालिफाई हुआ है और अभी पूरा फोकस फाइनल पे है। मुझे अच्छा लगता है जब पब्लिक होती है, जब क्राउड होता है, तो टोक्यो में कोई नहीं था लेकिन यहाँ पे क्राउड है तो उससे बूस्टअप मिलेगा।
पुरुष हॉकी में बेहतरीन खेल कर प्रदर्शन करने के बावजूद अंतिम मिनटों में हुए गोल के कारण भारत को जर्मनी से 3-2 से हार का सामना करना पड़ा। जर्मनी फाइनल में अब नेदरलैंड से खेलेगा, जबकि कांस्य पदक के लिए भारत के सामने होगी स्पेन की टीम। मैच के बाद भारतीय कप्तान हरमनप्रीत,
हमने स्टार्ट अच्छा किया, स्कोर किया, बट समहाउ आई थिंक हमें पता था कि जर्मनी जो टीम है, जो अच्छी टीम है, वो बॉल के साथ मैनेज अच्छा करती है एंड डिफेंसिवली हम थोड़ा सा और अच्छा कर सकते थे आई थिंक, बट पूरा ओवरऑल मैच देखें तो हमने बहुत अच्छा खेला, अच्छी हॉकी खेल के दिखाई है। स्टिल वी हैव चांस टू यू नो विन अ ब्रॉन्ज मेडल फॉर आवर कंट्री।
आज महिलाओं की गोल्फ स्पर्धा में अदिति अशोक और दीक्षा डागर अपने ओलंपिक अभियान की शुरुआत करेंगे। टेबल टेनिस के महिला टीमों के क्वार्टर फाइनल में भारत की भिड़ंत होगी जर्मनी से। एथलेटिक्स में पुरुषों की ऊंची कूद में सर्वेश कुशारे, महिलाओं की 100 मीटर हर्डल दौड़ के पहले राउंड में ज्योति येराजी, पुरुषों के ट्रिपल जंप में अब्दुल्ला अबू बकर और प्रवीण चतरवाल अपनी अपनी स्पर्धाओं में उतरेंगे। वहीं पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपल चेज स्पर्धा के फाइनल में होंगे अविनाश साबले। वेटलिफ्टिंग में टोक्यो ओलंपिक खेलों की रजत पदक विजेता मीराबाई चानू महिलाओं के 49 किलो भार वर्ग में आज पेरिस ओलंपिक खेलों में अपना अभियान शुरू करेंगी। महिला कुश्ती के 53 किलो भार वर्ग में अंतिम पंगाल के सामने होंगी जेनेप येसिल की चुनौती। पेरिस से आकाशवाणी के लिए मैं महेंद्र सिंह लालस।
और श्रोताओं, अब समय हो चला है कि आपको इतिहास के पन्नों में हम झांक कर बताएं कि कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं आज के दिन घटित हुई थी। तो न्यूटन ने वर्ष 1668 में ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से आज के दिन ही अपनी मास्टर डिग्री हासिल की थी। और ब्रिटेन म्यूजियम की स्थापना 1753 में पार्लियामेंट एक्ट के तहत की गई थी। और आज के दिन ही वर्ष 1880 में उचित वक्ता को पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र द्वारा प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र माना गया था।
In 1905, Indian National Congress declared to boycott the British goods for the first time against Bengal partition and also advocated to buy Swadeshi products.
51 फीट लंबाई, 8 फीट ऊंचाई और 5 टन के वजन वाले पहले इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर का निर्माण आज के दिन ही वर्ष 1944 में हुआ था।
On this day in 1985, Geet Sethi became the third Indian world amateur billiards champion by beating Robert Marshall of Australia. Also in the year 1986, Lok Sabha passed Constitution's 53rd Amendment Bill conferring statehood on Mizoram.
और श्रोताओं को बता दें कि आज के दिन ही अमरीका ने 1957 में नेवादा परीक्षण स्थल पर परमाणु परीक्षण किया था। वर्ष 1990 में आज के दिन सऊदी अरब में सेना तैनात कर ऑपरेशन डिजर्ट शील्ड की शुरुआत की थी अमरीका ने।
On 7th August 1990, Government of India accepted the Mandal Commission's recommendations and decided to reserve 27% jobs for the backward classes. Also in the same year, Union Cabinet approved setting up of Indian Broadcasting Program Service. And in the year 1991, India successfully launched surface-to-air missile Prithvi 3 from Sriharikota.
श्रोताओं को बता दें कि आज के दिन ही वर्ष 1994 में इसराइल और जॉर्डन के बीच पहली टेलीफोन सेवा शुरू हुई थी। अमरीकी वैज्ञानिकों द्वारा 13,000 वर्ष पूर्व पृथ्वी पर गिरे उल्कापिंड के अवशेषों से मंगल ग्रह पर एक कोशिका वाले जीवों के होने की संभावना का पता आज के दिन ही 1996 में चला था। वर्ष 2000 में आज के दिन ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा एक कानून पर हस्ताक्षर करके अपनी शक्तियों का विस्तार किया गया था। और अब कार्यक्रम में समय हो चला है जानी मानी हस्तियों को याद करने का। तो सबसे पहले आज हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं रविन्द्रनाथ ठाकुर को, आज उनकी पुण्यतिथि है। उन्हें राष्ट्रगान जनगणमन और बांग्लादेश के राष्ट्रगान आमार सुनार बांग्ला, गीतांजलि, पोस्ट मास्टर, मास्टर साहब गोरा, घरे बाइरे के लिए जाना जाता है। वे एक बांग्ला कवि, कहानीकार, गीतकार, संगीतकार, नाटककार, निबंधकार और चित्रकार थे। और श्रोता आपको बता दें कि वर्ष 1913 में उन्हें गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
And he was also an exponent of the Bengal Renaissance. He advanced a vast canon that comprised paintings, sketches and doodles, hundreds of texts and some 2,000 songs. Also, his legacy endures in his founding of Vishwa Bharati University.
और श्रोताओं, खास बात आपको बता दें कि रविन्द्रनाथ की कहानियों में अपन काबुलीवाला और सुसंस्कृत बंगाली भूत भावनाओं में एक समान है। उनकी ये कहानियां आज भी उतनी ही लोकप्रिय हैं जितनी पहले थी और हमेशा बनी रहेंगी।
He was also a fellow of the Royal Asiatic Society. Referred to as the Bard of Bengal, at the age of 16, he released his first substantial poems under the pseudonym Bhanu Singha, or Sun Lion. As a humanist and universalist, he denounced the British Raj and advocated independence from Britain.
और श्रोताओं, आपको बता दें कि आज ही पुण्यतिथि है गुलशन बावरा की। वे हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार थे और उनका मूल नाम गुलशन कुमार मेहता था। उन्हें बावरा नाम फिल्म वितरक शांति भाई पटेल ने दिया था। और आपको बता दें कि पहले वो रेलवे में कार्य करते थे, लेकिन उनकी कल्पना की उड़ान ने उन्हें फिल्म उद्योग के आसमान पर स्थापित कर दिया था। आइए सुनते उनकी ये रचना। श्रोताओं, उनके मुख्य फिल्मों की हम बात करें तो सट्टा, बाजार, जंजीर, उपकार, परिवार, कसमे वादे, सत्य पे सत्ता, अगर तुम ना होते, हाथ की सफाई, सनम तेरी कसम, हकीकत ये वादा रहा जैसी फिल्में थीं। और गुलशन बावरा को पहली सफलता फिल्म सट्टा बाजार से मिली थी 1957 में, जब उनका ये लिखा हुआ गीत लोकप्रिय होगा, तुम्हें याद होगा, कभी हम मिले थे, मोहब्बत की राहों में मिलकर चले थे। लेकिन हम आपको यहां पर सुनाते हैं उनकी एक और रचना।
तुमने हमको देखा है, हम तुम सनम सातों जन्म मिलते रहे हो जैसे, ओ हमने तुमको देखा।
And dear listeners, today is the death anniversary of Esther Phillips, an American singer best known for her R&B vocals. She rose to prominence in 1950s, scoring several major R&B hits. Phillips received a Grammy nomination for her single Home Is Where the Hatred Is in 1973, and her disco recording of What a Difference a Day Makes was a major hit in 1975. So let's listen to her song What a Difference a Day Makes by Esther Phillips.
What a difference a day makes. 24 little hours from the sun and the flowers, where there used to be rain, my yesterday was blue, dear. Today I'm a part of you, dear. My lonely nights are pretty.
And dear listeners, today is the birth anniversary of M.S. Swaminathan, an Indian agronomist, agricultural scientist, genetist, administrator and humanitarian. Swaminathan was a global leader of the Green Revolution that he's famous for. He has been called the main architect of the Green Revolution in India for his leadership and role in introducing and further developing high-yielding varieties of wheat and rice.
और श्रोताओं, आज ही जयंती है अवनींद्रनाथ ठाकुर की। वे भारत के प्रख्यात चित्रकार और साहित्यकार थे। उन्हें राष्ट्र से बड़ा प्रेम था। सांस्कृतिक गुलामी से मुक्ति के लिए उन्होंने अपने अग्रज गगनेन्द्र ठाकुर के सहयोग से 1907 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स नामक एक संस्था की स्थापना की थी। और उनकी चित्रकला के प्रमुख उदाहरण हैं शाहजहां की मृत्यु, बुद्ध और सुजाता, कच्छ और देवयानी। और आपको बता दें कि उन्होंने 1905 से 1916 तक गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट के उपप्राचार्य के रूप में भी कार्य किया था। और श्रोताओं, आज जयंती है वासुदेव शरण अग्रवाल की। वे भारत के जाने माने विद्वानों में से एक थे। भारत के इतिहास, संस्कृति, कला, साहित्य और प्राच्य विद्या के कई विशेषज्ञों में से एक थे। वासुदेव शरण अग्रवाल हिन्दी विश्वकोश संपादक मंडल के प्रमुख सदस्य थे। उन्होंने मथुरा संग्रहालय के संग्रह अध्यक्ष के रूप में भी अपनी सेवाएं दी थीं।
And dear listeners, today is also the birthday of Suresh Wadkar, an Indian playback singer. He performs in both Hindi and Marathi films and has sung songs in various Indian languages. He was awarded the Sangeet Natak Akademi Award for 2018 for Sugam Sangeet. In 2020, the Government of India honored him with the Padma Shri.
और श्रोताओं, आपको बता दें कि सुरेश वाडकर ने ओंकारा, प्रेम रोग, राम तेरी गंगा मैली, हिना, रंगीला, माचिस जैसी फिल्मों में सफल गीत गाए हैं। उन्हें भोजपुरी, मराठी, कोंकणी भाषा में भी गीत गाने के लिए जाना जाता। उनका एक गीत जो बहुत ही ज्यादा लोगों के द्वारा पसंद किया गया, वो आपको हम सुनाते हैं।
मिले थे
listeners, now it's time to say goodbye for the day. Stay tuned for Samachar Prabhat, our Hindi news bulletin, which is coming up next, followed by morning news in English at 8:15 a.m. Thanks for tuning in. Have a superb day. Namaskar.